नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। समाचार एजेंसी AFP के रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि गाजा युद्ध में युद्ध विराम नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब हमास के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर को जो भयावहता दिखाई है वो याद दिलाती है कि हम बेहतर भविष्य के वादे को तब तक साकार नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम सभ्य दुनिया बर्बर लोगों से लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये एक निर्णायक मोड़ है। ये हम सभी के लिए निर्णय लेने का समय है कि क्या हम भविष्य के लिए लड़ने को तैयार हैं या अत्याचार और आतंक के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। निश्चिंत रहें, इजराइल लड़ेगा। 7 अक्टूबर से इजराइल युद्ध में है। इजराइल ने इस युद्ध की शुरुआत नहीं की। इजराइल ये युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन इजराइल इस युद्ध को जीतेगा। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने सोमवार को कहा कि शक्तिशाली सशस्त्र बलों के सदस्य और संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीश जवाबदेही कानूनों के तहत किसी भी अन्य लोक सेवक की तरह पूरी तरह उत्तरदायी हैं। डॉन समाचार की एक रिपोर्ट के अनुसार न्यायाधीश मंसूर अली शाह ने शीर्ष अदालत के 15 सितंबर के फैसले से असहमति जताते हुए ये टिप्पणी की। उस फैसले में शीर्ष अदालत ने जवाबदेही कानूनों में बदलाव को रद्द कर दिया था और सार्वजनिक पद धारकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को बहाल करने का आदेश दिया था। भारत राष्ट्र समिति के नेता कलवा कुंतला कविता ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपने दौरे के दौरान कहा कि समावेशी विकास के तेलंगाना मॉडल से समृद्धि आई है और राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का ये मुख्य मुद्दा रहेगा तथा पार्टी तीसरी बार जबरदस्त बहुमत से जीत दर्ज करेगी। BRS की विधान पार्षद को विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में सोमवार शाम को समावेशी विकास की खोज तेलंगाना मॉडल शीर्षक से एक व्याख्यान में संबोधन देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने जून 2014 में राज्य के गठन बाद से अपने पिता एवं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा शुरू की गई कई नीतियों, रणनीतियों एवं पहलों के बारे में विस्तार से चर्चा की, जिससे क्षेत्र के भविष्य को संवारने में मदद मिली और भविष्य में और अधिक विकास के लिए संभावनाओं का सृजन हुआ। दुनिया को गरीब देशों पर वैश्विक ताप वृद्धि के बढ़ते असर को समझने और उससे निपटने के लिए प्रेरित करने वाले बांग्लादेश के अग्रणी जलवायु वैज्ञानिक सलीमुल हक का शनिवार को ढाका में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 71 वर्ष के थे। हक के परिवार में पत्नी, एक बेटा और बेटी है। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के जलवायु व स्वास्थ्य वैज्ञानिक और हक की मित्र क्रिस्टी एबी ने कहा, सलीमुल ने हमेशा गरीब और वंचितों पर ध्यान केंद्रित किया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जलवायु परिवर्तन का असर लोगों, उनकी जिंदगियों, उनके स्वास्थ्य और आजीविका पर पड़ता है। हक ने ढाका में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं विकास केंद्र स्थापित करने में मदद की। वो लंदन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण व विकास संस्थान में वरिष्ठ सहायक और कार्यक्रम संस्थापक भी रहे और उन्होंने इंग्लैंड तथा बांग्लादेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया भी है। अफगानिस्तान के 17 लाख नागरिकों समेत सभी अवैध प्रवासियों के पाकिस्तान छोड़कर जाने की समय सीमा नज़दीक आने पर अंतरिम गृह मंत्री सरफराज बुगती ने सोमवार को कहा कि अगर ये परदेसी खुद देश छोड़कर नहीं जाते हैं तो कार्यवाहक सरकार उन्हें चरणबद्ध तरीके से निकालना शुरू करेगी। पाकिस्तान ने इस महीने अवैध प्रवासियों के देश छोड़कर जाने के लिए 31 अक्टूबर की समय सीमा की घोषणा की थी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बुगती के हवाले से कहा, 1 नवंबर के बाद सरकार परदेसियों को चरणबद्ध तरीके से निकालने का अपना अभियान शुरू करेगी। बुगती ने पुष्टि की है कि पिछले 3 दिन में 20,000 से अधिक अवैध विदेशी पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रांतीय सरकारें अवैध विदेशियों के खिलाफ अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। फलस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के दौरान पकड़ी गई 3 महिला बंधकों को दिखाने का मकसद से एक वीडियो जारी किया है। महिलाओं में से एक ने संभवतः दबाव में बंधक संकट पर इसराइल की प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए एक संक्षिप्त बयान दिया। हमास के उग्रवादियों ने घातक हमले के दौरान लगभग 240 इसराइली लोगों को बंधक बना दिया था। संगठन ने कहा कि वो इसराइल द्वारा बंदी बनाए गए हजारों फलस्तीनी कैदियों के बदले में उन्हें रिहा कर देंगे। वीजा के अवैध कारोबार से जुड़े संदिग्ध एजेंट भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश के विद्यार्थियों और कामगारों से वीज़ा के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। एक ब्रिटिश मीडिया की जांच में पाया गया कि दक्षिण एशिया में संदिग्ध एजेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट कारोबार का अवैध रूप से संचालन कर रहे हैं और इस सेवा के बदले मोटी कमाई कर रहे हैं, जबकि ये सेवा मुफ्त में मिलनी चाहिए। रविवार को द ऑब्जर्वर समाचार पत्र की खबर के मुताबिक दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में दलाल इन देशों में सोशल मीडिया मैसेजिंग सेवाओं पर विज्ञापित बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के लिए 800 पाउंड तक की रकम वसूल रहे हैं। माना जाता है कि ये समस्या पाकिस्तान में सबसे खराब है, जहां जांच में पाया गया कि एजेंटों द्वारा वीज़ा अपॉइंटमेंट प्रणाली का दुरुपयोग पिछले वर्ष में काफ़ी बढ़ गया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।